ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा। मतदान 5 फरवरी और मतगणना 8 फरवरी को होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही कृषि का दर्जा फिर से बहाल करने की घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे कुली और ऑटो कैब चालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। देश की फॉर्म टू फोर्क व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 कल दिल्ली एनसीआर में शुरू होगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। निर्वाचन आयोग ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान कार्यक्रम की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतगणना 8 फरवरी को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अधिसूचना 10 जनवरी को जारी की जाएगी और नामांकन की अंतिम तिथि इस महीने की 17 तारीख होगी।
It's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. Date of poll is 5th and counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको Wednesday में रखा है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ईवीएम से छेड़छाड़, शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में वृद्धि और मतगणना प्रक्रिया को धीमा करने के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दोहराया कि ईवीएम फुल प्रूफ उपकरण है और इसके मतदान डेटा को बदलना असंभव है। श्री कुमार ने कहा कि आयोग दिल्ली विधानसभा के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
There is no evidence of unreliability or any drawback in the EVM. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments, no alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless.
हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में 1,55,00,000 से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 83,00,000 से अधिक पुरुष मतदाता और 71,00,000 से अधिक महिला मतदाता हैं, जो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में 1,00,000 से अधिक मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 2,00,000 से अधिक युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं चुनाव में धन बल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल मार्गों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और नेताओं के हेलीकॉप्टरों की जांच की जाएगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जहां 62 सीटें जीती थी, वहीं भाजपा ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। प्रादेशिक समाचार के लिए दिल्ली से मैं दीपेंद्र कुमार।
दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। सोशल मीडिया पर श्री नड्डा ने कहा कि चुनाव देश और राज्य को विकास और सुशासन के पथ पर आगे बढ़ाने का माध्यम है। उन्होंने दिल्ली के लोगों से ऐसी सरकार चुनने का आग्रह किया जो जीवन स्तर में सुधार, भ्रष्टाचार से निपटने, प्रदूषण को कम करने और रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। उन्होंने दावा किया कि 5 फरवरी को मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी।
एक खूबसूरत दिल्ली बनाने का इस विजन को वोट करेंगे और 5 तारीख के मतदान के बाद 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली में कमल का फूल खिलकर दिल्ली को बेहतर बनाने में हम लोग इस काम पे लगेंगे।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली के लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ों, सीवरेज की समस्या और सड़कों की खस्ता हालत से राहत मिलेगी।
दिल्ली की जनता इसलिए भी वोट करेगी कि ये जो कूड़े का ढेर है इससे निजात मिलेगी, कि ये जो नालियां भरी खड़ी हैं, ये जो रोड्स की हालत है उनसे भी निजात मिलने का दिन 5 तारीख निश्चित होगा।
वही आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली की जनता फिर से उनकी पार्टी को वोट करेगी और सरकार बनाने का मौका देगी।
देखिए, दिल्ली की जनता बहुत एक्साइटेड है चुनाव को लेकर, क्योंकि वो जो 10 सालों से काम हुए उस कामों को आगे बढ़ाना चाहती है। कहें जो 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, पानी दे रहे हैं, पानी 24 घंटे देने का योजना बना रखी है, स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, बस फ्री किया महिलाओं के लिए, 2100 रूपये देने का वादा कर रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, बुजुर्गों का इलाज सारा फ्री करा रहे हैं। तो एक अरविंद केजरीवाल जी हैं जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता एक उत्सव के माहौल में निकलेगी।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 25 जनवरी को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ऑनलाइन चुनाव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य मतदाता जागरूकता और सहभागिता को बढ़ावा देना है।
हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में इस ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वाज ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 23 जनवरी के बीच ऑनलाइन किया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार के रूप में प्रथम पुरस्कार 10,000 रूपए, द्वितीय पुरस्कार 7,000 रूपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 5,000 रूपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को भागीदारी का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं जो 19 जनवरी तक चलेंगे। सीईओ ने सभी पंजीकृत मतदाताओं और कक्षा 9 से आगे के छात्रों से प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही कृषि का दर्जा फिर से बहाल किया जाएगा, जिसे केजरीवाल सरकार ने खत्म कर दिया है। कृषि मंत्री ने ये सभी घोषणाएं आज दिल्ली देहात के लोगों से मुलाकात के दौरान की। इसके अलावा श्री चौहान ने दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली में भी लागू करने का आग्रह किया।
जो भारत सरकार की किसान कल्याण की योजनाएं हैं उनको आप दिल्ली के किसानों के लिए लागू करो, आप प्रस्ताव भेजो, ये पैसा ले जाओ और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाओ।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय राजधानी के कुलियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने ऑटो और कैब चालकों की शिकायतों का हल किया। श्री वैष्णव ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके मुद्दों का समाधान भी जल्द से जल्द किया जाएगा। दिल्ली मंडल कुली यूनियन की ओर से 6 मांग और दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की ओर से 5 मांगों वाला एक ज्ञापन केंद्रीय रेलवे मंत्री को सौंपा गया। इस ज्ञापन में ऑटो चालकों की काली पीली टैक्सी और ऑटो रिक्शा की पार्किंग के चार्ज को कम करने की मांग को श्री वैष्णव ने तुरंत मान लिया और इसके अलावा 4 अन्य मांगों को भी जल्द ही पूरा करने की बात कही। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चुनावी गीत जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये गीत हर दिल्लीवासी की आवाज है, जिसमें दिल्ली में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर 3 महीने के भीतर दूसरी बार उनसे मुख्यमंत्री आवास खाली करवाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच है कि वो ऐसा करके दिल्ली के विकास कार्यों को रोक देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो हर हाल में दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेंगी।
मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newzoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारत पोल अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए युग में ले जाएगा।
भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी।
श्री अमित शाह ने कहा कि इससे आतंकवाद से संबंधित अपराधों और मादक पदार्थों, हथियारों तथा मानव तस्करी से संबंधित मामलों से निपटने में मदद मिलेगी।
सबसे बड़ा फायदा अंतर्राष्ट्रीय डेटा के उपयोग के बारे में, 19 प्रकार के डेटाबेस जो इंटरपोल के हैं वो आज हमारे पास उपलब्ध होंगे। एनालिसिस कर क्राइम रोकने की हमारी सिस्टम खड़ी करने के लिए भी उपलब्ध होंगे और अपराधियों को पकड़ने के लिए भी उपलब्ध होंगे और साइबर अपराध की नई चुनौतियों को भी एक स्पीड के साथ इससे हम आगे ले जा सकते हैं।
इस अवसर पर श्री शाह ने 35 सीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किए, जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर का अनावरण किया। सरकार ने इस वर्ष के कैलेंडर की थीम जन भागीदारी से जन कल्याण रखा है। रेल भवन में कैलेंडर का अनावरण करते हुए श्री वैष्णव ने पिछले एक दशक में विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी शासन के प्रभाव का उल्लेख किया। उन्होंने गरीबों के कल्याण में सुधार, महिलाओं को सशक्त बनाने और पूरे देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए परिवर्तनकारी शासन की भूमिका पर जोर दिया। राजधानी के राजघाट स्थित गांधी स्मृति 16वें आदिवासी आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी युवाओं का विकास और सशक्तिकरण करना है, जिसमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, झारखंड के सिंहभूम, मध्य प्रदेश के बालाघाट और छत्तीसगढ़ के सुकमा और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिलों से लगभग 200 लोग भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सभी युवाओं को राजघाट, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट और राष्ट्रीय समर स्मारक के साथ साथ दिल्ली मेट्रो का दर्शन कराया गया। देश की फार्म टू फोर्क व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 कल दिल्ली एनसीआर में शुरू होगी। इसमें 30 से अधिक देशों के 2300 से अधिक प्रदर्शकों के शामिल होने की संभावना है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान महोत्सव के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के लिए आज पवित्र चादर रवाना की। इस अवसर पर श्री सक्सेना ने देश और दिल्लीवासियों के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं श्री केजरीवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 813वें वार्षिक उर्स के अवसर पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ के लिए पवित्र चादर पेश कर देश में सुख शांति और तरक्की की प्रार्थना की है। हरियाणा के फरीदाबाद में अगले महीने से 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर आज हरियाणा पर्यटन निगम की प्रधान सचिव कला रामचंद्रन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी अधिकारियों को निर्धारित समय अवधि में तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड जारी है। इसका असर यातायात और रेल परिचालन पर भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा, मतदान 5 फरवरी और मतगणना 8 फरवरी को होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही कृषि का दर्जा फिर से बहाल करने की घोषणा की। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे कुली और ऑटो कैब चालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। और देश की फार्म टू फोर्क व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 कल से दिल्ली एनसीआर में शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।